नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों की यात्रा में हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, सहयोग से सुखमय संसार। सहयोग, द वर्च्यू ऑफ कॉपरेशन, इसके बगैर सुखमय संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। सहयोग के बगैर व्यक्ति के जीवन में सफलता की भी कामना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वो नैतिक मूल्य है जो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी और जरूरी है, आवश्यक है। तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लाएं, आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। और हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारी हैं बीके लीना बेन। बीके लीना बेन, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं बीके लीना बेन का परिचय करवाना चाहूंगी। बीके लीना बेन चंडीगढ़ से हैं और 25 वर्षों से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था में सेवाएं दे रही है। आप कई विषयों पर अपने लोकल एरियाज में जाकर लेक्चर्स भी देती रही हैं। आप बहुत अनुभवी हैं और इसलिए आज आप हमारे शो में आए हैं, अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए फिर से एक बार हम आपका दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं। दीदी, आज का हमारा नैतिक मूल्य है सहयोग, कॉपरेशन। क्या है सहयोग और ये कितने प्रकार का होता है, इस पर थोड़ा आप इसका शाब्दिक अर्थ हमें समझाइए। कॉपरेशन,
सहयोग अपने आप में एक गुण भी है, शक्ति भी है
जी।
दुनिया में सहयोग के बिना कभी भी कोई कार्य हुआ नहीं है
जी।
क्योंकि समाज या संसार एक समुद्र है, जैसे समुद्र में अकेले अपने आप इंसान कुछ नहीं कर सकता
जी, बिल्कुल।
तो जब हम सबके साथ मिलके हाथ में हाथ देकर चलते हैं, तो हम जीवन की एक लंबी यात्रा को सुखद और सफल सहज पार कर सकते हैं
जी।
पर वर्तमान समय समाज में देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर सहयोग की भावनाएं कम होती जा रही हैं
जी,
क्योंकि इंसान स्वार्थी होता जा रहा है
जी।
स्वार्थ के कारण उसके अंदर ये सहयोग की भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। हर इंसान को लगता है बस मैं सुखी रहूं, मैं बस अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज अचीव कर लूं। इसीलिए सहयोग लेना तो सबको अच्छा लगता है, पर देना सबको मुश्किल लगता है
जी। क्यों जरूरी है ये नैतिक मूल्य हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है?
सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कहानी के रूप में आपके सामने उदाहरण रखूंगी
जी।
कि एक बार 5 ये उंगलियां हैं हाथ की
जी।
तो इन 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई
जी।
तो अब लड़ाई हो गई तो हर उंगली जो है वो कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो पूछा गया आप क्यों बड़ी हैं, तो सबसे पहली उंगली ने बोला कि मैं जो हूँ, मैं तो गुरु नानक देव जी ने भी ऊपर इशारा किया, भगवान की तरफ इशारा करती, इसलिए मैं बड़ी हूँ। दूसरी ने कहा मैं तो हूँ ही बड़ी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तीसरी ने कहा कि मैं तिलक देती हूँ सबको, मैं बड़ी हूँ। चौथी ने कहा कि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उन्होंने सबसे छोटी उंगली का सहयोग दिया था, इसीलिए पहाड़ उठाने में नहीं बड़ी हूँ। और अंगूठा कहता मेरे बिना तो कुछ भी नहीं होगा, तो इनमें खूब युद्ध हो गया। तो एक बुजुर्ग आई और उन्होंने कहा कि अगर आप सारे बड़े हैं तो आप लड्डू बना के दिखाओ अकेले अकेले। तो वो अकेले अकेले लड्डू बनाने लगे, अब बने नहीं। तो फिर उन्हें बुजुर्ग ने कहा अगर आप मिलके बनाओ तो देखो कैसे होता है
जी।
तो जैसे ही मिलके काम किया तो सहज हो गया
जी।
तो सहयोग भी एक वो चीज है जो हम सब मिलके कोई काम करते हैं तो वो सहज होता है। हम अगर अकेले, अकेला तो कहते हैं एक अकेला व्यक्ति जो पहाड़ नहीं तोड़ सकता
जी, कठिन हो जाता है।
जिंदगी एक इतना बड़ा पहाड़ है, उसको हम अकेले नहीं कर सकते हैं
जी।
चाहे घर परिवार में है तो हम एक दो के सहयोग से ही चलते हैं
जी।
चाहे हम अपने किसी भी फील्ड में हैं,
बाहरी
क्षेत्र में हैं, समाज में हैं, सब हम एक दो के सहयोग से ही आगे बढ़ते
जी।
हैं।
मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर समाज में और रिलेशंस में आप सहयोग की, कॉपरेशन की क्या भूमिका है, उसे थोड़ा विस्तार से समझाइए।
समाज में भी, समाज को हम अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से बहुत कुछ देते हैं इसलिए समाज में अगर हम सहयोग एक दो का नहीं देंगे तो पूरी दुनिया नहीं चल सकती है। जैसे एक देश दूसरे देश को सहयोग देता है तभी व्यापार चलता है,
या शासन करने के लिए भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए।
हाँ जी, सबका सहयोग चाहिए। और घर परिवार में भी मान लो पति पत्नी है, अगर एक दो को सहयोग देते हैं, आगे बच्चे जो हैं वो मम्मी पापा को सहयोग देते हैं या उनको देते हैं, तो घर परिवार अच्छी तरह चल पाता है। इसलिए घर परिवार में भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सभी रिलेशंस में एक दो के सहयोग का। घर में आप देखें बचपन से ही अगर देखा जाए तो सहयोग से ही सब काम जुड़े हुए हैं। जैसे एक इंसान अकेला ही है, जैसे आप छोटे थे अकेले थे, आपकी मम्मी ने आपको सहयोग दिया तो आज आप एक बड़ी सीट पे आ गई हैं। अगर उनका सहयोग आपको ना मिलता तो आपका कोई भी एक्टिविटीज निखर के समाज के सामने नहीं आती है। तो इसीलिए सब कुछ दुनिया में सहयोग से ही जुड़ा हुआ है। तो सहयोग को हम अपने जीवन में लाएं, इसके लिए हमें क्या अपने जीवन में करना पड़ेगा,
इसको हम अपने वृत्ति में कैसे लाएं। सबसे पहले हमें अंदर से भावना होनी चाहिए कॉपरेशन की, दूसरों को कॉपरेट करने की, क्योंकि हम चाहते हैं लेकिन देना, तो हम अपने वृत्ति में कैसे इसको धारणा में कैसे लाएं।
है तो वैसे ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सिखाया नहीं जा सकता है सहयोग एक ऐसी भावना है। वो बात अलग है कि हम कुछ लोगों को तो सहयोग देते हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, जो लोग हमें पसंद हैं
बिल्कुल ठीक,
उनको तो हमें सहयोग देना बहुत इजी लगता है। और जिन लोगों से हमारा विचार नहीं मिलता है उन लोगों से हम कट होना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए इसको जबरदस्ती ग्रहण करने वाली चीज नहीं है और ये नेचुरल सबके अंदर होती है क्योंकि ये भी एक ईश्वरीय देन है सहयोग। इसीलिए अगर देखा जाए तो दुनिया में जो लोग करप्शन का कार्य करते हैं वो भी एक दो का सहयोगी देते हैं। ठीक है कि वो उल्टे काम में दे रहे हैं,
गलत काम में भी सहयोग देते
हैं, और कोई सहज और सीधे काम में देते हैं। तो इसीलिए सहयोग को हम अपनी वृत्ति में धारण करें कि हम सबको सहयोग दें। क्योंकि आजकल सहयोग जो है हम सोचते हैं गिव एंड टेक, मतलब कोई मुझे दे तो मैं उसे दू।
एक होता है सहयोग देना, एक होता है लेना। हाँ। इसको कैसे डिफरेंशिएट
करें? तो इसीलिए हम पहले देने का भाव रखें, क्योंकि लेना तो इंसान को एक सहज हो गया है ना। लेने टाइम तो वो सोचता है कि कोई इंसान उसको सहयोग देने टाइम पे आ गया तो उसका थैंक्स भी करता और सहज स्वीकार कर लेता है सहयोग। इसलिए वो ये नहीं सोचता कि सहयोग देने वाला व्यक्ति जो है वो अपना समय निकाल के आया, अपना कोई काम छोड़ के आया है, या वो किस परिस्थितियों से निकल के आया है। तो हम सहज ही ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें वो सहयोग दे के चला गया। और कहते हैं डूबते को तो तिनके का सहारा। तो इसीलिए जब इंसान बहुत बड़ी उलझन में हो, परिस्थिति में हो, उसे कोई आके एकदम सहयोग दे तो हम उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अचानक आपका पांव स्लिप हो गया और आपको उस टाइम किसी ने आके मदद की तो आपको वो भगवान ही लगा तो आप उसके उस टाइम की मदद को कभी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में और कई बार याद करेंगे उस चीज को। लेकिन जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें रास्ते में कई लोग गिरे हुए मिलते हैं या किसी के साथ जीवन में घटना घट जाती है, जरूरतमंद लोग हैं तो हम उनको सहयोग नहीं दे पाते। हमें लगता है कि मेरा काम इम्पोर्टेंट है,
वृत्ति में नहीं है वही। हाँ। वृत्ति में हम इसे लाएं कैसे? कभी कभी ये सोचते हैं ना कि टाइम नहीं है या फिर कुछ और चल रहा होता है दिमाग में।
वही कहना स्वार्थी नेचर हो गया,
स्वार्थी नेचर,
इसीलिए लगता है कि मेरा काम इम्पोर्टेंट है। दुनिया में तो आजकल रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लोग कहते हैं हम किस किस का करेंगे, कब तक करेंगे, ये तो रोज ही होता रहता है। इसीलिए इसको इग्नोर कर दें। हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाते हैं कि ये तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हम जो और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन पे कहके छोड़ देते हैं क्योंकि सेल्फिश नेचर है। तो इसीलिए सहयोग की भावना को हम तभी अपने अंदर ला सकते हैं जब हम स्वयं का योग ईश्वर से जोड़ेंगे। क्योंकि जब हम किसी से सहयोग लेते हैं हम खुद अपने आप को उभार पाते हैं और हमारे जीवन में वो चीज दिखने लगती है तो सहज हम दूसरों को दे सकते हैं।
क्योंकि किसी को देने के लिए हमारे अंदर भी तो वो पावर होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसीलिए पहले हम परमात्मा से योग लगाएं तो हमारे अंदर सहयोग की भावना स्वतः आती है। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इस विद्यालय में जुड़ने से पहले मैं बहुत सेल्फिश नेचर थी और मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं था। इसीलिए हम छोटे थे घर में तो भाई बहनों में भी जैसे छोटा हो ही जाता थोड़ा बहुत, तो अगर हमारे भाई ने नहीं कोई चीज खाई है तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगता था उसने नहीं खाया तो कोई नहीं, मुझे लगता था ठीक है तुम अपनी जगह रहो मैं अपनी जगह रहूंगी, ऐसा सोचती थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में हम जुड़े और हमने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा तो सबसे बड़ा चेंज हमें ये अपने जीवन में फील हुआ कि हमें औरों को सहयोग देने की भावना पैदा हो गई, औरों के लिए शुभ सोचना हमें आ गया। हमें ये आता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था ये वैल्यू क्या चीज है इसके बारे में। इसीलिए दुनिया में जितनी भी वैल्यूज हैं या जितनी भी उलझने हैं एक इसी वैल्यू से जुड़ी हुई।
तो ऐसे व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है जो सबको कोऑपरेट करना जानता है, सबको सहयोग देता है?
जो सबको सहयोग देता है एक तो उसके मन में सबके प्रति शुभ भाव होता है, दूसरा उसको हर व्यक्ति अपना लगता है। जैसे हमने कहा हम विद्यालय से जुड़े तो हमारे मन में भी ये भावना जागने लगी कि दुनिया का हर व्यक्ति अपना है और तेरा मेरा जो ये था ये खत्म हो गया। इसीलिए हमें लगा कि नहीं, अगर हम ईश्वरीय कार्य में लगे हैं तो अगर हम ही अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमें देख के दूसरे कोई कैसे सीखेंगे। इसीलिए वो चीज दूसरों प्रति शुभ भावना और दूसरों की कमी कमजोरी अगर हम नहीं देखते हैं तो हम सहज दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। अगर हमारे मन में उनके प्रति नेगेटिव ही चलता रहेगा क्योंकि हर इंसान चाहता है कि दुनिया में सब लोग मेरे अनुसार चले, मेरा कहना माने, मेरे को महत्व दे, मुझे समझे। तो अगर हम भी ऐसी ही वृत्ति रखेंगे तो हम दूसरों को सहयोग नहीं दे सकते।
ये एक तरीका भी है दूसरों से सहयोग लेने का भी, अगर हम देते हैं शुभ भावना रखते हैं तो बदले में सहयोग पाते भी हैं।
हाँ जी
जी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समय पर सहयोग नहीं मिलता है, कभी कभी समय पर सहयोग नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या उस समय कैसे उसको मेंटेन करें अपनी वृत्ति को और कैसे सबका सहयोग हमें मिले?
आपसे बात करते करते मुझे एक दृष्टांत याद आया, जैसे द्रौपदी के ऊपर एक परिस्थिति आई कि उसकी लाज के ऊपर प्रश्न उठ गया तो उस टाइम वो बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि जो उसके अपने थे वही उसको सहयोग नहीं दे रहे थे। तो जब सब तरफ से उसको कहीं सहयोग नहीं मिला तो एकदम उसने परमात्मा को पुकारा
जी।
जैसे ही पुकारा तो परमात्मा की ओर से उसको सहयोग मिलने लगा, साड़ियों पे साड़ियां उसके पास आती गई। उस टाइम उसने एक प्रश्न भगवान से किया कि श्री कृष्ण को कहा कि आपने इतनी देर क्यों कर दिया। उन्होंने कहा द्रौपदी याद करो तुमने सबसे पहले किसको याद किया
जी।
तो उसे याद आया कि सबसे पहले मैंने पितामह को पुकारा, उन्होंने तो अपनी आंखें झुका ली, फिर मैंने धृतराष्ट्र की ओर देखा, वो तो अंधे ही थे देख ही नहीं पा रहे थे, फिर गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा और फिर अपने पतियों की ओर देखा जो मुझे दाव पे लगा चुके थे और लास्ट दुश्मन के आगे भी हाथ जोड़े। जब कहीं भी कोई पुकार सुनने वाला नहीं मिला तब तुझे मैं याद आया
जी।
और कहा जैसे याद आया तुमने पुकारा और मैं आ गया। तो जब हम कभी ऐसी उलझन में, ये तो एक उदाहरण है, कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी टाइम किसी के ऊपर आ सकती है, अगर हम परमात्मा से सहज हमारा कनेक्शन है, हम परमात्मा को दिल से याद करें
जी,
तो वो सहज ही हमें अपनी मदद देने के लिए पहुंच जाता है
जी।
इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं
जी,
अपने इस विद्यालय से जुड़े हुए
जी,
भी
जी,
कि जब
हम चाहेंगे कोई एक आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें
जी। हमने वहाँ चंडीगढ़ के एक एरिया में सेवा शुरू की थी
जी,
तो वहाँ पे अभी सेवा शुरू ही की थी, तो वहाँ पे जो पब्लिकली लोग हैं वो हमें कोऑपरेट करें किसी काम में, ये सब नहीं था। तो हम प्रोग्राम एक बार रख लिया बहुत बड़ा, तो हमने सोचा कि अब प्रोग्राम तो आज हमने करना है और हमारे पास तैयारी करने वाला कोई नहीं है, तो चलो जहाँ हॉल लिया है वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इतने में क्या हुआ कि बच्चे हमारे पास कई सारे आ गए, बच्चे कभी कभी वहाँ आश्रम पे आ जाया करते थे, तो हमने बच्चों को कहा कि चलो तैयारी करते हैं, तो बच्चों ने इतनी जल्दी तैयारी कर दी सारी, जहाँ वो मैट बिछाने थे और सब जो हमने अपने स्लोगन्स कोटेशंस लगाने थी, बैनर्स लगाने थे, उस टाइम हमें तुरंत याद आया कि देखो परमात्म कार्य है, इसीलिए इस कार्य में स्वतः ही जब हम अच्छा काम करते हैं, दूसरों की भलाई का काम करते हैं, तो हमें स्वतः ही सबका सहयोग प्राप्त होता है। जहाँ निस्वार्थ भाव है वहाँ सहयोग मिलता ही मिलता
है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, निस्वार्थ, जहाँ स्वार्थ हम अनुभव करते हैं जीवन में, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सहयोग सिर्फ मिलता रहे तो बिल्कुल नहीं मिलता है, पर निस्वार्थ भावना होनी बहुत जरूरी है जी। ये बिल्कुल ठीक है आपने। और अगर सहयोग ये ना हो, ये कला हमारे अंदर ना हो, तो क्या समाज में, सोसाइटी में, संबंधों में क्या नुकसानदायक इसके परिणाम हो सकते हैं?
जब इंसान को किसी का सहयोगी ना मिले
जी,
जीवन में बिल्कुल अकेला हो जाए
जी,
तो वो तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा
जी,
या सुसाइड कर लेगा
जी।
इसीलिए मुझे एक और इस पे एक घटना याद आई कि एक बार चंडीगढ़ में बहुत तेज पानी का बहाव आया
जी,
तो हमने न्यूज पढ़ी न्यूज़पेपर में कि एक व्यक्ति 3 घंटे उस पानी में जूझता रहा
जी,
एक पेड़ को पकड़ के, अब वो निकल ही नहीं पा रहा था, पानी का बहाव बहुत तेज था, बहुत तेज था, और 3 घंटे बाद कहीं कोई पहुंचे लोग उसको मदद करने के लिए। उस टाइम मुझे याद आया उस न्यूज को पढ़ते कि इसने कभी किसी को सहयोग दिया नहीं होगा
जी,
जो इसको समय पे सहयोग मिला ही नहीं
जी।
इसीलिए जब इंसान सहयोग की वैल्यू तब पता लगती है हमें, जब हमें कोई दूसरे सहयोग नहीं देते हैं, पर ये भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के समझ में नहीं आता है कि मैंने सहयोग नहीं दिया तो मुझे नहीं मिल रहा, नहीं तो लोग अक्सर दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे को जरूरत थी, किसी ने मेरी परिस्थिति समझी नहीं है, मेरी उलझन समझी नहीं है और मुझे सहयोग दिया ही नहीं है, क्योंकि ब्लेम करने की नेचर सहज हो गई है इंसान की। और दूसरा, कई बार जलसी का संस्कार भी लोगों में काम करता है, जिसके कारण लोग सोचते हैं कि कहीं ये बहुत आगे ना बढ़ जाए, कहीं इसका ही दुनिया में नाम रोशन ना हो जाए, तो इसीलिए लोग सहयोग दूसरे को देना भी नहीं चाहते। चाहे आजकल स्टूडेंट्स देख लो स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो साथ वाला जो होगा उसको अच्छी तरह प्रॉपर सहयोग नहीं देंगे, अगर वो पूछ भी ले ना
जी।
और चाहे टीचर्स भी हो गए हैं आजकल, वो भी अगर बच्चा स्कूल में पूछे तो वहाँ उसको इतना सहयोग नहीं देंगे, हाँ वो ट्यूशन रख ले तो फिर उसको एक्स्ट्रा सहयोग वो देने को तैयार है,
क्योंकि उसे भी कुछ मिल रहा है बदले में, स्वार्थ आ गया ना वहाँ पर भी,
स्वार्थ आ गया, स्वार्थ आ गया है, इसीलिए वो सहयोग की भावनाएं आज दुनिया में कम होती जा रही हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो सहज ही हमारे अंदर इस चीज को जागृत कर सकता है,
आध्यात्मिकता जिसे आप कहते हैं,
आध्यात्मिकता ये सहज जीवन में जागृत कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में 7 वैल्यूज हैं और वो 7 वैल्यूज का ही आपस में एक दो से सहयोग है, जैसे शांति है, प्रेम है, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति, ज्ञान, ये आपस में एक दो से जुड़े हुए हैं
जी।
अगर इन सातों गुणों का सहयोग हमें मिलता है
जी,
तभी हमारे अंदर आध्यात्मिकता, स्व अध्याय, स्व अध्ययन, सेल्फ रियलाइजेशन जागृत होता है और इससे हमारी अंदर की वैल्यूज बढ़ती है। जैसे सोने को कहते हैं जितना घिसाओ उतनी चमक आती है, हीरे को जितना तराशा जाए उतना उसकी चमक आती है। तो ऐसे ही जितना हम सेल्फ को एनालाइज करते हैं उतना हमारे अंदर ये वैल्यू बढ़ती है सहयोग की।
तो ये आध्यात्मिकता के द्वारा जैसे आपने बताया कि सहयोग की वृत्ति को हम अपने अंदर ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और सहयोग जितना बढ़ता जाएगा हमारे अंदर बढ़ेगा, हमारे परिवार में हमसे बढ़ेगा, समाज में बढ़ेगा, विश्व में बढ़ेगा। कैसे हम इस पूरे संसार को सुखमय बनाने के लिए इस वैल्यू को, इस नैतिक मूल्य को कैसे सहायक सिद्ध कर सकते हैं, कैसे पूरे विश्व को सुखमय बना सकते हैं इसके द्वारा, सहयोग की शक्ति जिसे आप शक्ति भी कह रहे हैं, गुण भी कह रहे हैं, कैसे ये सहायक सिद्ध हो सकता है?
सहयोग अपने आप में एक गुण भी है, शक्ति भी है। गुण तो कुछ इंसानों में दुनिया में पाया ही जाता है लेकिन जब ये गुण हम आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो एक शक्ति बन जाता है। जैसे सहयोग कई बार दुनिया में लोग गरीबों को भी दे देते हैं, जैसे ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, ये भी सहयोग है, हम समाज को दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में। और दुनिया में बहुत लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जब ये सहयोग एक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाता है तो पूरा एक शक्ति रूप बन के सामने आता है जिससे हम अनेकों की डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा, इन्होंने सबसे पहले ईश्वरीय कार्य में अपने जीवन को परमात्मा के कार्य में लगाकर अनेकों के आगे उदाहरण बने और इनके सहयोग से आज ये संस्था इतना बड़ा कार्य कर रही है। और हर आने वाले इस संस्था में वो ये सोचते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो भी हम करें, इनके कर्मों से उन्होंने सीखा। तो ब्रह्मा बाबा ने एक बात पक्की की थी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे।
बहुत सुंदर।
और वही हर आने वाला यही सोचता है कि जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो सहयोग एक शक्ति बन गया,
बिल्कुल
इतना ज्यादा जो अपने अच्छी सोच और वाइब्रेशन से सबके अंदर एक अच्छी भावनाएं पैदा कर।
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत स्पष्ट रूप से सहयोग की शक्ति और गुण दोनों का अर्थ हमें समझाया और ये कितना हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है इसके बारे में हमें अपने विचार बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग से ही सुखमय संसार बन सकता है, सहयोग के बगैर हम एक अच्छे संसार, एक अच्छे सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते। और जितना हम सबको सहयोग देते रहेंगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे, दुआओं का पात्र बनते रहेंगे और ऐसे हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, अगले एपिसोड में हम फिर से नए मूल्य के साथ, नई शख्सियत के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे और इस नैतिक मूल्य की यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा